الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر اسی طرح ہے جیسے سورج ہے. سورج ہے تو زندگی چل رہی ہے، حرارت ہے، قوت ہے، روشنی ہے، اور یہ سب کچھ سورج ہمیں بغیر کسی تفریق کے دے رہا ہے، بغیر کسی معاوضے کے. اگر سورج نہ ہوتا تو اس زمین کی مخلوق ٹھٹر ٹھٹر کے مر جاتی. اسی طرح اگر رمضان نہ ہوتا تو ہم پر یہ رحمتوں اور بخشش کے خزانے کبھی نہ کھل سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش نہ ہو پاتی. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ رکھ کر انسانیت پر بہت بڑا کرم فرمایا. تو اس مہینے میں نیکیوں میں جلدی کرنی ہے. آج کل جیسے کہ سحری کا ٹائم تیزی سے پیچھے آ رہا ہے. سوچیں کہ اگر کوئی انسان دیر سے کھانا شروع کرتا ہے تو جہاں اذان ہوتی ہے اس کی اگر پوری روٹی باقی بچی ہوئی ہے تو وہ کتنی کھا لے گا؟ بہت تیز بھی کھائے گا تو ایک دو نوالے ہی کھا سکے گا، اس سے زیادہ نہیں. لیکن جس انسان نے پہلے سے شروع کیا ہوگا اور اس کے ایک دو نوالے رہ گئے، وہ جلدی اس کو کھا پا لے گا اور سحری مکمل کر سکے گا. ایسے ہوتا ہوگا گھروں میں آج کل نا. اسی سے زندگی کو سوچیں. زندگی بھی ایسے ہی ہے، جب ٹائم ختم ہونے والا ہوگا اور اگر کسی کے پاس بہت کچھ کرنے کو رہ گیا ہوگا تو وہ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ اس نے پہلے شروع نہیں کیا، لیٹ شروع کیا. اور جس نے پہلے سے شروع کیا ہوگا تو شاید جانے کا وقت جب آ جائے، جب اس زندگی کو بند کرنے کا وقت آ جائے، تو جیسے ہم روزہ بند کرتے ہیں اور ایک دو نبھالے ہیں تو جلدی سے کھا لیا، اسی طرح اگر ایک دو چیزیں رہ گئی ہوں گی تو وہ جلدی سے کر لے گا. تو وقت کی قدر جان کے نا پہلے سے کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کر ہی لیں گے، اور رمضان آتے ہی جائیں گے تو کیا ہو گیا، وہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، اتنی بھی کیا سر پہ اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، بس آرام کرو. نہیں، اس ماہ مبارک کی بہت قدر کرنی ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا ہے یہ پوری انسانیت کے اوپر رحمت کا مہینہ ہے. انسانیت چاہے تو اس مہینے میں بخشش مانگ کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس مہینے کے لمحات کو کیش کرانا ہے، اس کو کارآمد بنانا ہے، یہی اس کی قدر ہے. اس میں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ تو چھوٹی سی ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، نیکیوں کی ہرس کریں. ہم کبھی کہیں بیٹھتے ہیں نا تو 15-20 منٹ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، خیالات میں، سوچوں میں، اندازہ ہی نہیں ہوتا 20 منٹ گزر گئے. کہتے ہیں بس میں 5 منٹ بات کروں گی، 5 منٹ کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں تو اصل میں 50 منٹ گزر چکے ہوتے اور پتہ ہی نہیں چلتا 50 منٹ میں نے بات کر لی، صرف الیکس الیک میں ہی 10-15 منٹ گزار دیتے. تو اکثر ہمارے لیے یہ 5-10 منٹ جو ہوتے ہیں نا، ان کو تو چھوڑیں، 50-60 منٹ بھی اہمیت نہیں رکھتے. فون چیک کرنے کرنے میں گھنٹہ گزر جاتا ہے، کسی سے گپ شپ کرنے میں اندازہ ہی نہیں رہتا ٹائم کا کہ گھنٹہ بھی ہو گیا. حالانکہ جانتے ہیں یہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے. کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ ایک منٹ میں؟ ایک منٹ میں کم از کم آپ 40 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، 40 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ سکتے ہیں، 20 ٹائمز آپ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, ये पढ़ सकते हैं 20 टाइम्स आप सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कह सकते हैं। 5 टाइम्स कम से कम आप सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं, और कम से कम 10 मरतबा तो सूरह इखलास पढ़ ही सकते हैं। तो ये 1 मिनट है, 1 मिनट टाइमर लगा के अपने बच्चों के साथ आज ये एक्टिविटी कीजिए कि लेट्स सी हम 1 मिनट में क्या कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, हो सकता है आप इससे भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और इस बार बार ये कलिमात कितनी ही दफ़ा दोहरा सकते हो। तो जब ये 1-1 मिनट की प्रैक्टिस आप करेंगे तो उसके बाद सोचिएगा कि ये छोटा सा 1 मिनट है कितना मामूली लगता है ना। कैसे ऐसे छोटे से कितने ही 1 मिनट हमारी जिंदगी में वेस्ट होते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम नल खोलते हैं ना, खोल के अभी इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कितने ही सारे कतरे हैं जो जाया हो रहे हैं। हम कभी शीशा देखते हैं, कभी कोई चीज निकालते हैं, कभी कुछ रखते हैं, वो नल चल रहा है। अब उसमें कितने कतरे हैं आपने कभी गिने भी नहीं होंगे। इसी तरह हमारी जिंदगी का नल खुला हुआ है, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है, इसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी है, समझने एक रेजर्वॉयर है। अब उसमें से निकल गए मिनट्स तो चले गए, हम उनको काम में ही नहीं लाए, लेकिन हमें ये कभी एहसास नहीं होता कि ये हम मिनट्स वेस्ट करके अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे। इस 1 मिनट में वो मिरेकल्स हो सकते हैं जो दुनिया की जिंदगी के 60, 70, 80 सालों में भी नहीं हो सकते। वो कैसे? लेकिन इस 1 मिनट में आपने जन्नत में कई दरख्त लगा लिए अगर इन कलिमात को पढ़ लिया। इस 1 मिनट में आपके अमालनामे में वो अमल लिखा जा सकता है जिससे अफजल कोई अमल कयामत के दिन लेकर ही नहीं आ सकता। इससे मीजान का एक पलड़ा इतना वजनी हो सकता है कि दूसरी तरफ जमीन और आसमान और उसकी हर चीज भी रख दी जाए तो वो एक पलड़ा ज्यादा वजनी होगा। इससे जन्नत में आप महल तामीर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है? जी हाँ, ये 1 मिनट में ही ये आमाल जो मैंने आपको बताए हैं इतनी इतनी फजीलत रखते हैं कि ये इनसे इनको पढ़ने से ये सब कुछ मिल सकता है। मगर हम सोचें तो सही इसकी अहमियत। और ये बहुत आसान और एक्सेसिबल आमाल है, मगर हमारी तवज्जो इनकी तरफ नहीं होती, इसलिए कि इतनी फिक्र नहीं है ना, इतनी परवाह नहीं है, इतनी ज्यादा परेशानी हमें नहीं है आखरत की, वाकई नहीं है। अगर हो ना तो हम 1-1 मिनट को कीमती जानने जानते हुए गुजारे। और हम ये देखें कि अल्लाह के हाँ इस 1 मिनट की भी कदरदानी है, तो मैं कैसे इसको वेस्ट करूं? मैं इतने बड़े बड़े अजर कैसे छोड़ूं? और भी रमजान में तो हर चीज का अजर वैसे ही बढ़ जाता है, ये तो आम दिनों की बात है, उनमें भी आप ये कलिमात कहेंगे तो ये सब कुछ मिल। फिर भी अगर इंसान इस तरफ तवज्जो ना करे और गफलत में जिंदगी गुजार दे तो कौन कसूरवार है? फिर कयामत के दिन इसीलिए कहा जाएगा कि अपने आप को ही मलामत करो, किसी और को नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान खुद को खुद हलाक कर रहा है। लिहाजा कीमती बना लें अपने 1-1 मिनट को। और ये तमाम कलिमात किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, सबको आते हैं, सबको आते हैं, इनको कहीं से रीड करने की आपको जरूरत नहीं है, जुबानी सबको याद है। लिहाजा सुस्ती नहीं करनी, गफलत नहीं करनी। अल्लाह ताला हमारे 1-1 वक्त को हमें तौफीक दे कि हम इसको आखरत का तोशा बना ले। आज हम जिस बीमारी पे बात करेंगे वो है गुस्सा। गुस्सा जो है ये आग का शोला है। गुस्सा वैसे तो ऐसी चीज नहीं है कि कभी आना ही नहीं चाहिए। हम कह देते ना गुस्सा हराम है, नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए कि जहां गुस्सा होना चाहिए वहां गुस्सा करना भी जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कभी गुस्सा आ जाता था, मगर उनका गुस्सा वैसा नहीं होता था जैसे हमारा गुस्सा होता। और दूसरे वो बात बात पे गुस्सा नहीं कर लेते थे। हाँ, जहाँ पे दीनी गैरत की बात आती थी, कि नाजायज बात होती थी उसकी बात आती थी, तो तब गुस्सा आता था। और वो आप देख सकते हैं अहादीस में हमें पता चलता है कि फलां वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया। तो गिने चुने चीजें हैं, ऐसे नहीं रोजाना ही गुस्सा आ रहा है, उस चीज पे गुस्सा आ रहा है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, जैसे हमें तो रोज ही गुस्सा रहता है। तो बाज जगहों पे गुस्सा करना जरूरी है, मगर जो आज गुस्से ने शक्लें इख्तियार कर ली हैं वो वाकई बिल्कुल नाजायज हैं और हराम है। इसलिए कि आज गुस्सा किस तरह का होता है, सिर्फ जुबान से नहीं गुस्सा होता, दिल में हम बातों को रख लेते हैं, और फिर जब गुस्सा दिल के अंदर रासिख हो जाता है तो उसके बाद जुबान से भी फजूलियात ही निकलती हैं उस शख्स के बारे में। कभी उसकी गइबत होती है, कभी उसके ऊपर बहुतान होता है, क्योंकि अंदर गुस्सा है ना। तो गुस्सा जब दिल में होता है तो फिर कहीं चिल्लाते भी हैं, कहीं गालियां भी देते हैं, कभी तेज नजरों से भी देखते हैं, कभी झुंझलाते भी हैं। तो बाज गुस्से तो वक्ती होते हैं, और बाज गुस्से ऐसे होते हैं जो हम पालते हैं अपने अंदर। अब देखें, इंसान की खासियत है कि वो मट्टी से बना है और मट्टी में सुकून होता है, और आग की खासियत है भड़कना और हरकत करना और बेकरारी। तो शैतान आग से बना है, गुस्से के बाद इंसान का शैतान से ताल्लुक हो जाता है। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे कुछ वसीयत कीजिए। आपने फरमाया गुस्सा ना किया कर। उसने कई दफा सवाल किया, आप यही फरमाते रहे, इसलिए कि हो सकता है वो गुस्सा ही करता। तो एक हदीस में आता है, इब्ने उमर ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मुझे अल्लाह के गजब से कौन सी चीज दूर करेगी। हर कोई नहीं चाहता, हर एक चाहता है, हर एक का मेरे ख्याल ये सवाल होगा कि कौन सी चीज है जो मुझे अल्लाह ताला के गुस्से से दूर कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा ना कर। ठीक है, फरमाया पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को गिरा दे, पहलवान वो है जो गुस्से के बाद अपने नफ्स को काबू रखे। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि गुस्सा मैं करके ना ज्यादा पावरफुल लगती हूँ, गुस्सा करूंगी तो शोहर को दबा लूंगी, गुस्सा करूंगी तो बच्चों को दबा लूंगी, गुस्सा करूंगी तो सब मेरी बात सुनेंगे। हालांकि जब हम इंसान गुस्से में होता है तो वो सबसे कमजोरी की हालत में होता है। वो कैसे, गुस्से में आप ताकतवर नहीं होते, कमजोर होते हैं। क्यों? इसलिए कि आपका अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं होता, ना अल्फाज पे कंट्रोल होता है, ना अपने हाथों पे कंट्रोल होता है, ना पैरों पे कंट्रोल होता है, ना अपने जज्बात पे कंट्रोल होता है। इसीलिए तो लोग बाद में कहते हैं, ओ जी मैं गुस्से में थी उस वक्त, तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता। अपना दिमाग किसको दे दिया फिर, शैतान को, वो जो मर्जी मुंह से बुलवाए। शैतान सबसे ज्यादा गुस्से के वक्त इंसान पे काबू पा लेता है। ये भी एक दरवाजा है जो आप खोल देते हैं शैतान के आने के लिए। जब इंसान गुस्सा करता है किसी के ऊपर, तो असल में उसने वो दरवाजा खोल दिया। अब वो शैतान अंदर आके क्या करेगा, वो खैर तो नहीं डालेगा, उसके बाद मुंह से भी ऐसी बातें निकलवाएगा जो आम हालात में शायद कभी भी ना इंसान बोले। इसीलिए बाज मर्दों को देखें, वो तलाक दे देते हैं गुस्से में, जी गुस्से में दे दी थी, अब अफसोस हो रहा है। तो वो क्या चीज है, इंसान गुस्से में अपने आप पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी स्टेयरिंग को शैतान के हाथ में दे देता है। जो स्टेयरिंग पे बैठ गया, जो ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और उसके हाथ में अब कंट्रोल आ गया, सोचें वो हमें कहाँ ले जा सकता है। हम अपने चाबी, अपना स्टेयरिंग शैतान को दे देते हैं गुस्से की हालत में। तो जहां हमने गुस्सा नहीं करना होता, वहां पे नहीं भी करते, जहां पे दिल करता है, कि जहां पे पता होता है ना ये कमजोर है वहां पे करते हैं, तो इसका मतलब गुस्सा हमारे इख्तियार में है ना। तो ये गुस्सा जो है कितने तरीकों से निकलता है, इंसान की जुबान भी इसकी वजह से गुनाहगार होती है, और बाज दफा ये जुल्म की सूरत में निकलता है, क्योंकि गुस्सा किसी पे होता है और वहां अब निकाल नहीं सकते तो किसी और पे निकालते हैं। बॉस ने डांटा तो सबॉर्डिनेट पे गुस्सा उतर रहा है, सास ने डांटा तो बच्चों को मार मार के अधूंगा कर दिया। तो ये सोचा करें कि उस वक्त के जितना मेरा इसके ऊपर बस है ना, इससे ज्यादा अल्लाह को मेरे ऊपर कुदरत है। अगर मैं इस पे गुस्सा निकालूंगी तो अल्लाह ताला कयामत के दिन अपना गुस्सा मुझ पे नाजिल करे, जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा माफी की जरूरत होगी। और मजलूम के ऊपर गुस्सा निकालना जबकि उसका कोई कसूर भी ना हो, क्योंकि वो कमजोर है इसलिए उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो सोचेंगे हम कितने कमजोर हैं अल्लाह के आगे। वो चाहे तो एक कुन से हमारी क्या हालत कर दे। और इसके लिए एक और चीज भी है, ये सोचें कि अल्लाह ताला ने क्या रिवॉर्ड रखा है इसका। अगर मैं गुस्से को पी जाती हूँ तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, वल कादिमीन अल गैज, जो गुस्से को पी जाने वाले, गुस्से को दबा लेते हैं, गुस्से को खत्म कर देते हैं, उनको कहा गया उनके लिए जन्नत है, वो मोहसिनीन में से हैं। लिहाजा इसको अपनी ताकत समझिए कि मैंने गुस्से को दबाया है, इसको अपनी ताकत ना समझे कि मैंने गुस्से को निकाला है, क्योंकि हमारा यही कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने ना निकाला गुस्सा तो फिर मुझे समझेंगे कि इसको तो कुछ मतलब, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, मैं लोगों की नजरों में बेइज्जत हो जाऊंगी, तो मैं गुस्सा करके बताती हूँ कि मैं देखो क्या चीज हूं। तो नहीं, बड़ा वो है जो गुस्से को दबा लेता है। तो अपने आप से कहा करें कि आज तो इतनी सी बात को बर्दाश्त करना मैं नापसंद कर रही हूं कि मैं जलील हो जाऊंगी अगर मैंने दबा लिया गुस्सा, तो कयामत की रसवाई से और जिल्लत से कौन बचा सकेगा? जब अल्लाह ताला इंतकाम लेगा तो लोगों की नजरों में जलील होने से डरते हैं, और इस बात से नहीं डरते कि कयामत के दिन अल्लाह ताला और फरिश्तों और नबियों के सामने जलील होंगे। तो कितना भी इश्तियाल हो, उससे को पी जाना बड़े लोगों का काम है, और इससे अल्लाह ताला के नजदीक इंसान की इज्जत बढ़ती है। तो क्या हम पसंद नहीं करते कि कयामत के दिन आवाज दी जाए, जिसका अजर अल्लाह के जिम्मे है वो उठ के खड़ा हो जाए? जी हाँ, जिसका अजर अल्लाह के जिम्मे, अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया उसका अजर, वो खड़ा हो जाए। तो सिर्फ वही खड़ा होगा जिसने माफ कर दिया होगा। तो मैं फिर उनमें हो जाऊंगी जो खड़े होने वाले होंगे उस दिन, और कितना बड़ा रिवॉर्ड है। अब आप कहते होंगे उस वक्त कौन सा किसी को याद रहता है, तो याद रखना है क्या, उस वक्त अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। वुजू का हुक्म दिया गया, वुजू करने से भी गुस्सा ठंडा होता है। आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, इसीलिए पढ़ने का हुक्म दिया गया कि शैतान का दरवाजा आपने जो खोल दिया, शैतान अब अंदर आ गया। और बाज लोग इसको एज अ वेपन यूज करते हैं, हथियार के तौर पे, कि मैं गुस्से के जरिए काम करा लेती हूँ, कहीं काम नहीं हो रहा ना तो ऐसा गुस्सा दिखाएंगे ताकि काम बन जाए, चाहे वो बच्चों के साथ है, चाहे बाहर है, चाहे किसी कहीं पे भी है। अब जहां पे पोलाइटली बात कर सकते हैं वहां पे हमने क्या चूज किया, मैं गुस्सा करती हूँ, देखा मैंने ऐसा गुस्सा किया ना, वो सीधे हो गए। तो याद रखें, हमने ऐसा हथियार अपने हाथ में पकड़ा हुआ है कि इससे दूसरे को तो बाद में कोई नुकसान होगा, सबसे पहले हमें खुद होता है। जिस हाथ में आपने सोचे वो हथियार पकड़ा हुआ ना, वो हाथ कोई अगर छलनी कर दे तो क्या होगा? आप सोचते हैं इससे दूसरों को डरा के काम करा लेंगे, ये अपने लिए बुरा है, इसलिए कि इंसान को बीमारियां लग जाती हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां, कहीं ब्लड प्रेशर की, कहीं कुछ। इंसान आप खुद सोचिएगा कि गुस्सा करने के बाद क्या हालत रहती है? दिल सुकून से होता है? नहीं ना। इसी तरह अब से मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि आप अपनी नमाजों को चार चांद कैसे लगा सकते हैं। एक एक चीज आपको इंशाल्लाह बताऊंगी ताकि आपके लिए करना आसान हो जाए। यानी नमाज तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन खूबसूरत नमाज कैसे पढ़ी जाए। अब ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो कि जरूरी नहीं है कि आपने करनी है। आप मसलन केक बनाते हैं, केक बना के वैसे ही नहीं रखते, फिर उसके ऊपर आइसिंग करते हैं, फूल बूटे बनाते हैं, क्या क्या उसको करते हैं, लेयर्स लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए। तो नमाज तो हो जाती है इन बातों के बगैर भी, लेकिन अगर इन चीजों को शामिल कर लेंगे तो नमाज और ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। तो आज हम अपनी नमाज में क्या करेंगे कि अब से हम हर सजदे में दुआ जरूर शामिल कर लेंगे। देखिए, इंसान सजदे में अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है, लिहाजा सजदे में दुआएं कबूल होती हैं। तो हर सजदे में कम से कम एक दुआ जरूर मांग लीजिए। अब ये कितनी सारी दुआएं हमने सीखी हैं इतने दिनों में, इनको याद करने की कोशिश कीजिए, इन्हीं को सजदे में शामिल कर लीजिए। अगर कुरानी दुआएं हैं तो ज्यादातर रब्बाना से शुरू होती हैं। कुरान आप सजदे में नहीं पढ़ सकते, तो आप ऐसे करें जैसे अल्लाहुम्मा रब्बाना कह दिया, तो अब वो कुरान नहीं है, ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो वो भी इसी तरह आप मांग सकते हैं। और मसनून दुआएं तो वैसे ही मांग सकते हैं। तो दुआ के बगैर सर ना उठाइए, आपकी नमाज ब्यूटीफुल होगी। इस तरह हम इंशाल्लाह सदका करेंगे। ये महीना चूंकि नेकियों को बहुत टाइम मल्टीप्लाई करने का महीना, लिहाजा सदके की भी अहमियत बढ़ जाती है। जब आप किसी को सदका देने लगे ना, तो बस एक बात को सोच के सदका दीजिएगा। ये सोचिएगा कि ये एक गरीब लड़की नहीं है, एक गरीब औरत नहीं, ये मैं हूं असल में। ये तो मेरे मालिक ने मुझ पे करम कर दिया कि मैं आज एक छत तले बैठी हुई हूं, वरना ये मैं हूं। किसी को बीमारी के इलाज के लिए पैसे दें तो ये सोचिएगा कि ये मैं हूं, ये तो मेरे मालिक का करम हुआ जिसने मुझे सेहत के साथ रखा हुआ था, रखा हुआ है, वरना ये मैं हूं। इसी तरह किसी को गुर्बत में देखें, बुरे हालों में देखें, तो सोचें ये मैं हूं, ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि उसने नियमतों में रख के मुझे ऊपर वाला हाथ दे दिया, वरना ये मैं हूं। तो हर जगह पे सोचिएगा ये मैं हूं, ठीक है, क्योंकि हम में कोई ऐसे सुरखाब के पर नहीं लगे हुए कि हम देने वाले हैं। हम दूसरी तरफ भी हो सकते थे, हम लेने वाले भी हो सकते थे, हम वो हाथ भी हो सकते थे जो किसी के आगे उठा हुआ, हम वो फटे पुराने कपड़ों में खड़ी हुई लड़की भी हो सकते थे, हम वो होमलेस भी हो सकते थे जो बाहर बारिश में बैठा है, ये हम ही हैं। तो हमारी कोई इतनी काबिलियत और कोई बहुत बड़ा कोई हमारे कारनामे नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छे हाल में रखा, ये उसका शुक्र है। ये हम भी हो सकते थे जो किसी अस्पताल के बिस्तर पे पड़े हैं, ये कोई मेरी और आपकी कोई बहुत बड़ी अकलमंदी नहीं है कि हमें बड़ी समझ थी जो आज हम सेहत के साथ, और इनको तो पता नहीं अकल ही नहीं थी जो बीमार होगा, नहीं, वो भी मैं ही हूं। तो इससे आपके दिल में शुक्रगुजारी भी आएगी, और आप जिस जज्बे के साथ देंगे ना किसी को, वो जो दर्दे दिल होगा ना, वो ऐसे नहीं आ सकता जब तक आप ऐसा ना सोचे। वो सदका फिर कोई और ही तरह का सदका होगा जो आप इस तरह से करके देंगे, और फिर उसमें एहसान जिताना भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि समझे कि मैंने खुद को दिया ये, और फिर उसके बाद ही सर झुका लें कि मेरे अल्लाह मैं तो मोहताज हूं, मैं तो फकीर हूं, अल्लाह तूने मुझे दिया तो मैंने आगे दिया, मेरी क्या औकात। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा ऊपर वाला हाथ दिए रखे, कभी नीचे वाला हाथ ना दे। नीचे वाला हाथ होना बहुत बड़ी इंसान के लिए एक महरूमी होती है, पता नहीं किस तरह किस दिल के साथ वो हाथ उठते हैं जो किसी से मांगने के लिए खड़े होते हैं। इसलिए कभी भी खुद को बड़ा ना समझे कि मैं दे रही हूं, मैंने इतने का चेक वहां पे काट के दे दिया, मैंने इतने दे दिए। नहीं, किसी और को नहीं दिए, मैंने खुद को दिए। और देख लेना फिर उसके बाद भलाई भी किसको मिलनी है, खुद को ही मिलनी है ना, तो अपने आप का फायदा किया ना, किसी और का तो नहीं किया। इसको तो 4 दिन रोटी खा लेगा उन पैसों से, लेकिन आपको कितना कुछ मिल जाएगा आखरत में जो कभी खत्म ना होने वाला है। तो भला किसका किया, अपना। तो इस नियत के साथ सदका कीजिए, बेस्ट टाइम है सदका करने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज हवा की तरह हो जाते थे खैर और भलाई के कामों में। तो दीजिए और मुट्ठी बंद ना करिए, अल्लाह ताला और अता करेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए इन सारी बातों पर अमल करने की। अल्लाह ताला हमारे गुस्सों को दूर कर दे, अल्लाह ताला हमें कंट्रोल दे गुस्से में, और अल्लाह ही की मेहरबानी से ये हो सकता है, हमारे गुस्सों को अल्लाह ताला ठंडा कर दे। हम सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह हमें ये भी तौफीक दे कि हम गुस्से में भी बर्दाश्त का दामन हाथ से ना छोड़ें। रोज़ा चेंज का महीना है ये रमज़ान, चेंज का महीना है। अगर ये चेंज ही ना आई तो फिर क्या आया। तो हम अपने अंदर कोशिश करेंगे कि हमने ये इस पे वर्क करना है, हम इस पे कोशिश करेंगे कि हमें कामयाबी मिल जाए, और इसके लिए हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे अखलाक बेहतरीन बना दे, अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक साफ कर दे, और कल्बे सलीम हमें अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।